نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا چوڑی تقریر کرنا ہے تو ہی پڑھا جائے گا, تو اس لیے چھوٹا سا مذاکرہ ہے تبھی بعد لوگ پڑھ لیتے ہیں, خل جان کی بات نہیں ہونا چاہیے. ماشاء اللہ سے یہ میری مشورے میں, اللہ کرے کہ اللہ پاک اس کو بھی بگ مشورہ بنائے, بجھ کے دن کا مشورہ اثر ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں ماشاء اللہ ساتھی فکروں میں جڑنے لگے ہیں, تو جو سوچ اور وچار کی جا رہی ہے, فکریں دی جا رہی ہیں, ماشاء اللہ ایک عرصے سے آپ تشریف لاتے ہیں, ابھی دو تین ہفتوں سے ایک بات چل رہی ہے کہ مرکز کی آبادی کے سلسلے میں فکریں بڑھائی جائیں. الحمدللہ ساتھیوں نے نام دیے اور الحمدللہ تعالیٰ وہ آنا بھی شروع ہو گئے, آ رہے ہیں حضرات. جو حضرات تشریف لا رہے ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ مزید ان ساتھیوں کی بھی فکر فرمائیں جنہوں نے ارادے کیے لیکن ابھی نہیں آ پا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان ساتھیوں کی بھی فکر کریں جو اس کے علاوہ ہیں, جنہوں نے نام نہیں دیے لیکن کام کے ساتھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی متعلقہ مساجد کے اندر پوری طرح دھیان اور فکر رہنا ہے کہ وہاں ہمارے یہاں آنے کی وجہ سے وہاں کا کام متاثر نہ ہو. ہمارے امیر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ساتھی ہر جگہ کئی ہیں, اگر وہاں سے ایک ایک دو دو ساتھی یہاں نام لیٹ کر کے بھیج دیے جائیں, بقیہ ساتھی وہاں کام سنبھال لیں, تو وہاں کا بھی حرج نہیں ہوگا, یہاں کے بھی تقاضے پورا کرنا آسان ہوگا. لیکن بعض جگہوں پہ نرم گرم چلتا رہتا ہے. کام کی ایک خصوصیت ہے, وہ ہے جوش اور عدم جوش. ایک کیفیت ابال کی ہوتی ہے, ایک کیفیت ٹھہراؤ کی ہوتی ہے. ہر کڑی میں پہلے ابال آتا ہے پھر ٹھہراؤ آتا ہے. جب آپ دودھ گرم کریں گے پہلے ابال آئے گا پھر ٹھہراؤ آئے گا. لکلی شعین شرہ اور لکلی شرتن فتویٰ. ہر شے کا ایک ابال ہوتا ہے, تو ہر جگہ کام نشیب و فراز سے چلتا ہے, یہ ایک اصول ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی مسجد میں آپ کو ایک دم اچھے خاص سے ساتھ ہی کام کرنے والے دکھیں گے, پھر ایک دم ٹھنڈا سا ہو جائے گا, پھر دوسری مسجد میں اٹھیں گے پھر ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر اسی مسجد میں تھوڑے دن کے بعد پھر شروع کریں گے پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ مسجدوں کی سطح پر بھی ہوتا ہے, یہ شہروں کی سطح پر بھی ہوتا ہے, یہ علاقوں کی سطح پر بھی ہوتا ہے, یہ ملک کی سطح پر بھی ہوتا ہے, اور یہ عالمی سطح پر بھی ہوتا ہے. ایک حدیث شریف ہے, الا ان رحل اسلام دائرہ, اسلام کی چکی پھرے پھرتی رہے گی. اسلام کی چکی, یہاں سے اسلام کا آٹا جو ہے نا نکلتا رہے گا. چکی جو ہے نا آٹا پیسنے کی مشین کو کہتے ہیں, گرائنڈ مشین, گرائنڈر مشین جو ہوتی ہے, گرائنڈر جو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آٹا نکالا جاتا ہے. تو یہ جو چکی ہوتی ہے یہ پورے ملک پورے عالم میں گھومتی رہے گی. حدیث میں الا ان رحل اسلام دائرہ فدورو حیث دارہ, تم کو گھومنا ہوگا جہاں جہاں یہ چیز گھومتی رہے گی. تو اس وجہ سے کیا ہے, یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں, اور بعض مرتبہ اونچ نیچ کے کچھ اسباب بھی جمع ہو جاتے ہیں, بعض مرتبہ صرف غفلت ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, بعض جگہوں پہ مخالفت بالکل نہیں ہونا بھی ہوتا ہے. جس جگہ پہ آپ کو بالکل مخالفت نہیں ملے گی وہاں پہ کام آپ کو بہت ٹھنڈا ملے گا. مخالفت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک بچہ جو ہے نا پڑھتا تھا, ایک صاحب کا, وہ بگڑ گیا. हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत थानवी से मुरीद थे वो साहब जिनका बच्चा ये था, हजरत थानवी के पास वो आया कहने के था, वो बच्चा जाके जो है ना गड़बड़ हो गई, उसके अफकार ही बिल्कुल दहलियाना हो जा रहे हैं, वो नमाज में से क्यों मजाक पड़ा रहा है। वो तो एक दौर उस पर बड़ा असर भी गुजरा है अलीगढ़ में, तो वहाँ का हर फारिग जो है ना वो मुर्तद के मुर्तदी होता था, ये अब्दुल मजीद दरियाबादी ने लिखा है जो वहाँ के प्रोफेसर। तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने उनको मशवरा दिया कि तुम जो है इसको बनारस यूनिवर्सिटी में दाखिल करो, बनारस खालिद काजरगंज की यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा कि तो वहीं इसका ये हाल हो गया, वहाँ दाखिल करो बोलो। कहने के भाई तुमने मुझसे मशवरा लिया, मैंने मशवरा दिया, अब वो बड़ों की बात होती है। हजरत बोले बल्कि उन्हें बनारस में भेजते ही उन्हें एकदम मजहबी हो गया, दाढ़ी ओढ़ी छोड़ लिया, टोपी, नमाज रोजे सब शुरू हो गए। तो हजरत थानवी से उन्होंने आके पूछे, हजरत कहानी तो पलट गई लेकिन समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि समझ में आने की है कि मैंने ये गौर किया कि अलीगढ़ में क्या हुआ उसके साथ, क्यों जो है ना वो मुतवज्जे नहीं है। तो वहाँ पता चला वो सारे मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, सारे मुसलमान, और यूनिवर्सिटी में आने वाले उस वक्त के मुसलमान जो है ना वो मजहबी नहीं होते थे, आज़ाद वाले होते थे। समझा ना, तो मैं ये समझ गया कि वहाँ पे चूंकि मुखालिफत वाला कोई माहौल नहीं है, इस्लाम के नाम का काम का ही है, और वो लोगों के जहन में यही है कि इस्लाम ऐसे ही होता है, लिहाजा वो दीन से दूर हो रहे। वहाँ जाने के बाद उसको हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट वाली बात हो गई, ये मुसलमान का है ये गैर मुस्लिम का है, ये मुसलमान का है या नान मुस्लिम का है, मुसलमान ऐसा करता नान मुस्लिम ऐसा करता, मुसलमान ऐसा रहता नान मुस्लिम ऐसा रहता, वो मजहबी बन गया बच्चा। तो मैंने ये हमारे अपने भी मुशाहदे की ऐसी चीज़ें हैं कि जिस जगह पर मुखालिफत बिल्कुल नहीं होती वहाँ पर भी काम बहुत ढीला हो जाता, और ऐसा भी देखा गया कि जहाँ बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो जाता है, मुखालिफत हो जाती है, वहाँ पर भी काम ढीला हो जाता है, क्योंकि मोरल डाउन हो जाता है काम करने वाले साथियों का। ऐसा भी होता है कभी कि बस तबीयतों की सुस्ती है, गफलत है, इस वजह से जो है ना काम सुस्त हो गया है, और मतलब असबाब अलग अलग होते हैं, इस मज़ाहरे के मुख्तलिफ किस्म के असबाब से हम सब घिरे हुए हैं, सारी दुनिया घिरी हुई है, हम भी घिरे हुए हैं। तो नशे व फराद रहेगा और इसमें घबराना नहीं चाहिए हमें। तो इसलिए अगर साथी बहुत कम हैं अपनी मस्जिदों में तो यहाँ आके वक्त से पहले इजाज़त ले लेके वहाँ पर वक्त पे पहुँच जाना, वहाँ पे काम करके आ जाना। जो साथी यहाँ रोज़ाना आने के लिए आ रहे हैं और अमीर साहब से बोल के हालात अपनी मस्जिद के रखे, फिर उसके बाद में यहाँ पे हाजिरी भी हो जाना, क्योंकि यहाँ आके क्या करना है उसका भी मुजाकरा करना है थोड़ा सा, और फिर उसके साथ साथ जो है वहाँ का जो काम है वो ढीला होने नहीं देना है। वहाँ की गश्त है, वहाँ की तालीम है, वहाँ का मशवरा है, वहाँ के फाइव अमल जितने भी पाँच अमल का जो सेटअप है उसमें किसी किस्म का ढीलापन नहीं आना, बल्कि उसको ताकत पहुंचाने के वास्ते यहाँ से क्या कमुक दी जा सकती है, मदद दी जा सकती है, उस पर वर्क कर लेके जाना। भाई वहाँ पे ये चीज़ चल रही है, इतने दिनों से हो रहा है, तो कोई ताकत नहीं पकड़ रहा, इसके बारे में तकाजा है हमारा। रोज़ाना यहाँ आने का मकसद ये भी होता है कि अपने तकाजे ला के डालते जाना, हमारे पास ये भी तकाजा है, ये भी तकाजा है, ये भी तकाजा है। कुछ अगर तकाजा यहाँ से पूरा नहीं भी किया गया ना, तो यहाँ से फिक्र का एक बोझ डाला जाता है कि भाई क्या कर रहे हो, फिर तुम लोग कुछ करो। तो जब बड़ा आदमी बोलता पुश करता है ना, तो फिर आदमी थोड़ा सा संभल के, अरे भाई कुछ हाथ पैर मारना है बोल के, वो भी एक काम होता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है बंदे को। तो इसलिए वहाँ अपनी अपनी मस्जिदों से आना और वहाँ पे भी काम होना ज़रूरी है, और यहाँ पर भी आपका पहुँचना ज़रूरी है, और अपने घर के कारोबार, बीवी बच्चे, जॉब वॉब, वो भी सब ज़रूरी है। ईमान वाले को डबल जॉब है हमेशा, क्योंकि ईमान वाले को डबल दुनिया है, उसको दुनिया भी है आखिरत भी है, बेईमान को खाली दुनिया है। तो बेईमान को सिंगल जॉब है, ईमान वाले को चूंकि दोनों दुनिया है लिहाजा ईमान वाले को डबल जॉब है। तो इसलिए हर ईमान वाले को जहनी तौर पर तैयार होना पड़ता है कि उसको अपने बीवी बच्चों कारोबार के साथ साथ दीन के लिए मुस्तकिल मेहनत को अपना मशगला बनाना। तो मुझे और आपको इस बात की फिक्र लेना है, इस बात की सोच लेना है कि हमें दीन की मेहनत के लिए थोड़ी सी मुस्तैदी बढ़ाकर तकाजों को पूरा करने के लिए हिम्मत से आगे बढ़ना है, हम अपना माइंड ये बनाएं। तो इसी सिलसिले में याद दहानी ये मुजाकिरे हो रहे हैं कि भाई हम हर पीर को यहाँ पर हर रोज़ जो है वो असर से लेके ईशा तक का वक्त दें, और दो तीन तरतीबें हमारे सामने आई थी कि हम जो मरकज़ का चिल्ला भी दे सकते हैं और हम जो है जाप का चिल्ला भी दे सकते हैं। जाप के चिल्ले का मतलब होता है कि जाप करना और फिर बाकिया वक्त पूरा मस्जिद में आके गुजारना, और एक मरकज़ का चिल्ला होता है कि मरकज़ में मरकज़ के चिल्ले की नौीयत जो है वो आम चिल्ले जैसी नहीं होती, मरकज के काम की नौीयत अलग होती है, लिहाजा इसका चिल्ला भी अलग होता है थोड़ा सा, तो उसके लिए भी हमें अपना वक्त निकालना है। और 10-10 दिन के एतबार से भी एक तकादा सामने आया था कि भाई हर मस्जिद से साथी 10-10 दिन के लिए यहाँ वक्त दे दें, हर मस्जिद से दो दो साथी मसल 10 दिन के लिए दे दिए जाएँ। और रोज़ाना के एतबार से भी एक फिक्र चलाई गई कि भाई रोज़ाना के एतबार से आना जाना हो। माशाल्लाह साथियों ने रोज़ाना के एतबार से भी नाम दिए और आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 10 दिन के एतबार से भी नाम दिए, इंशाल्लाह ताला आएंगे वो। तो आप हजरात को ये मेरे दोस्तों अर्ज़ करना है कि जो साथियों ने नाम दिए हैं उनको अच्छी तरह ये बात याद रहनी चाहिए, और जैसे जैसे उनको कोई उज़्र वगैरह पेश आ जाए तो वो इन्फॉर्म करें, हमें सबको फ़ोन कर दिया करें, साथियों को बता दें, और उसके अलावा भी जो है खुद भी थोड़ी सी हिम्मत कर लिया करें, पूरा इतना वक्त नहीं हो सकता तो थोड़े वक्त के लिए तशरीफ़ लाए। शहर में होने का मतलब यही होता है कि आदमी के लिए आसान है आना भी, जाना भी, बोलना भी, बताना भी, ये सब चीज़ें, और अपने काम को भी ढीला होने नहीं देना। बहुत से साथियों को ये इश्काल हो गया था कि अपनी मस्जिद के काम का क्या करें, तो आमिर साहब ने कहा ही था कि भाई अपने मस्जिद के काम का नुकसान नहीं करना है लेकिन यहाँ के तकाजों को पूरा करना है। अब मेरे दोस्तों भाई यहाँ के आने के आना एक काम हो गया, आने के बाद में काम करना एक काम है, आए लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ, तो इसके दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है कि आने वाला इस्तेकामत नहीं कर पाता फिर, अरे मैं गया था वहाँ पर कुछ काम है ही नहीं, और काम कितना नहीं है, काम तो काम ही काम है लेकिन हमने ना उसको तकाजे के हिस्से से लिया, ना मुजाकिरा किया उसका, ना उसको जिंदा किया, इस वजह से काम कुछ भी नहीं हुआ। तो काम फिर वक्त को काम में लाना, वक्त निकालना, शैतान पहले वक्त निकालने नहीं देता, जब आप निकाल के पहुंच गए हैं तो फिर उस वक्त को यूज़ करने नहीं देता, इस्तेमाल करने नहीं देता। आप हजरात बहुत ही सलाहियतों वाले लोग हैं, अपने 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 प्रोफेशन में, अपने अपने कंपनी में जहाँ जॉब करते हैं, जो भी जो है ना सेटअप है जॉब वगैरह का, उसमें कितने जहीन माने जाते हैं, कितने समझदार माने जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भी आदमी काम के एतबार से नहीं जमता है तो उसको फायर करने में कोई मुरव्वत नहीं की जाती है। कोई आदमी काम कर रहा है तो इसका मतलब ये कि उन्हें अपने फील्ड में बहुत अच्छा है, तो ही उन्हें यहाँ पे काम करना, वरना नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह इसका मतलब ये बनता है कि आप हजरत बहुत सलाहियत वाले लोग हैं, तो जिम्मेदार हजरत ये चाहते हैं कि भाई आपकी इन सलाहियतों को लगना है इस मेहनत में, दावत की इस मुबारक मेहनत में वक्त भी फारिग होना, वक्त फारिग होने के बाद में उसमें लगना भी है। आज ही हमारे अमीर साहब जो हैं वो फाइल्स निकाल के बैठे हुए थे, मुख्तलिफ मस्जिदों की फाइल्स बनाई गई, और 2000 यानी 7 से 8 7 8 की फाइल्स हैं वो, उसके बाद से उस पर कोई खास वर्क नहीं हुआ। 7 7 साल से 8 8 साल से 5 5 साल से 6 6 साल से हर मस्जिद में 4 महीने वाले कितने हैं, 40 दिन वाले कितने हैं, 10 दिन वाले कितने हैं, काम करने वाले साथी कितने हैं, अब राइट ना उसमें से कौन मूव हो गया है, कौन है वहाँ पे, कौन बैठा हुआ है, कौन सोया हुआ है, कौन खड़ा हुआ है, कौन काम में है, कोई काम में नहीं है, और रिव्यू करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे बेहिसाब काम है करने के वास्ते, मगर ये आने वाले जो साथी हैं इनका काम है कि वो यहाँ आके मुजाकिरा करें, फिक्रें लें, और फिर काम पेश करें अपने बड़ों के सामने कि ये काम है, इसको किया जा सकता है, ये काम है। अब आने वाले साथी जो भी असर में आए, इतने फाइल मस्जिदों के पड़े हुए हैं और उनको गर्द लग रही है, उनको निकालना है, और फिर जाहिर है कि उनका तफक्कुद करना है। तफक्कुद एक बंदे का होता है और एक बंदे के बारे में होता है, तो खुद यहाँ पे तो बंदे का तफक्कुद करने का मतलब ये कि वो है कहाँ, है नहीं है, काम में है नहीं है, किधर है क्या है, सब चीज़ें देखने की होती हैं उसको। नए लोग कितने उसमें ऐड हुए हैं, नए जाने आने वाले कितने हुए, सिरोजे वाले कितने पड़े, 10 दिन वाले कितने हुए, 40 दिन वाले कितने हुए। गर्ज ये है मेरे दोस्तों भाइयों के जो हजरत यहाँ तशरीफ ला रहे हैं उनके लिए काम बहुत है। वो काम क्या है वो खुद उनका काम है कि वो जाने इस बात को कि काम क्या क्या है यहाँ पे, और साथियों बड़ों से राय भी लें, अमीर साहब से पूछें भी, उनके सामने भी बात रखें, अमीर साहब इजाजत हो तो ये कर लें, इजाजत हो तो ये कर लें, ये काम है, ये काम है, ये काम है। जो बात अर्ज की गई थी मेरे दोस्तों, एक तो ये है कि मरकज को आबाद करना। मरकज को आबाद करने का मतलब होता है सबसे पहले मरकज में हाजिर रहना, ताकि मरकज में सडनली आने वाले तकाजों को फुलफिल किया जाए, पूरा किया जा सके। जैसे एक अरब साथी हमारे पास आए, इतफाक से जमात में एक साथी थे जिनके पास में गाड़ी थी, जाए जाके फ़ौरन लेके आ गए, नहीं तो फ़ोन करो, तलाश करो आदमी को, कौन अवेलेबल है, कौन अवेलेबल नहीं है, वो मसले सारे आते। इस वजह से आबाद करने में एक ये होता है कि 24 घंटे के एतबार से मस्जिद में आपस में एक दूसरे का मुजाकरा करके टाइम बांट के रहना। मस्जिद नबवी के आबाद होने में रात में तक ड्यूटियाँ मुकर्रर थी, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम की अजान जो है ना जब तक ना हो जाए तो बिलाल की अजान से तुम धोखे में मत आना, एक हदीस शरीफ है। बिलाल की अजान में तुम धोखे में ना आना जब तक कि अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम अजान ना दे, या इसका उल्टा है हदीस, मुझे पूरी शायद मुझे याद नहीं आ रही। दो अजान देते थे, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम देते थे, ये नाबीना थे, बिलाल अजान दे देते थे। उसकी तौजीह लिखी हुई है वहां पर कि एक सहाबी जो है ना वो रात में इबादत करने वालों को घर भेजने के लिए अजान देते थे। एक सहाबी जो है वो फजर की अजान के लिए अजान देते थे। ये था सेटअप ताकि मस्जिद नबवी पूरी तरह रात में आबाद रहे। और वो लोग जो अजान के बाद आ जाते थे, तो अजान के बाद कुछ लोग जो घर को चले जाते थे, तो उनको मालूम था कि अजान होते ही जो रात में वहाँ इबादत गुजारते चले जाएंगे तो दूसरे इबादत गुजार वहाँ पहुँच जाते थे फजर से पहले। ये सेटअप था वो, जिसकी वजह से ये दो मुअज्जिन वहाँ पे काम करते थे। इसी वजह से आज तक भी तहज्जुद की अजान का रिवाज हरमैन में मौजूद है। तहज्जुद की मुस्तकिल अजान नहीं होती लेकिन हरमैन में होती है, और ये तआमुल हरमैन कहलाता है, यानी हरमैन का वो आदतों में से है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है। ऐसे सुन्नत नहीं होता, उसकी एक तरतीब दूसरी है, क्योंकि अजान तहज्जुद के लिए सुन्नत अजान नहीं हुआ करती। खुलासा मेरे अर्ज करने का ये है कि फजर की रात में भी आबाद रहे मरकज, दिन में भी आबाद रहे। ये भी नहीं है कि असर के बाद अगर हम आ रहे हैं, असर में हम आ रहे हैं तो फजर से लेकर असर तक यहाँ कोई ना हो, ऐसा नहीं होना है। उसकी भी तरतीब बनानी होगी। आबादी मरकज में ये है कि मरकज़ में हमेशा साथियों का अवेलेबल होना, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि मरकज़ आमाल से आबाद हुआ करता है, बंदे खाली होते तो आबादी नहीं होगी, मरकज़ आमाल से आबाद होगा। तो मरकज़ में आमाल 24 आवर के लगे हुए हैं। फजर की नमाज के बाद अगर जमात है तो छह सिफात का मुजाकरा हो रहा है, दावत वाली बात हो रही, वरना नहीं, ऐसा नहीं है मरकज़ में, ऐसा नहीं होता। मरकज़ में होता यह है कि मरकज़ में फजर के बाद दावत वाली बात होगी, चाहे चंद आदमियों चंद मुसल्ली ही क्यों ना हो। ये तालीम जो है ना वो रोज़ होगी यहाँ पे, चाहे तो अमीर साहब मशवरा करके हयात साहबा को भी मुकर कर सकते अगर कोई आदमी ऐसा मुयसर है तो। यहाँ पर जमातों की कारगुजारी, जमातों के साथ मुजाकरा, जाने वाली जमातों की रुख्सती की हिदायत, आने वाली जमातों की कारगुजारी की तफसीलात, और जमातों में काम करने वाले साथी जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, काम करके पहुँचे हुए हैं या काम करने के लिए जाने वाले हैं लेकिन मुकीम है मरकज़ में, दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए चार ठहराना होता है, मरकज़ में ठहरना भी होता है, तो उन ठहरने वालों के साथ में काम की तफसीलात का मुजाकरा। काम की तफसीलात के मुजाकरे में काम करने वाले साथियों की तरबियत छुपी हुई होती है। खुरूज में वक्त का मुजाकरा अलग होता है, काम का मुजाकरा अलग होता है। जब हम खुरूज करेंगे तो हमारा वक्त कैसा गुजरे, किन किन आमाल में हमारा वक्त गुजरे, जो जो चार का पहाड़ा पड़ते हैं ना, ये चार काम करने के हैं, ये चार काम नहीं करने के हैं, ये चार काम जो है ना बिल्कुल कम करने के हैं, ये चार काम बिल्कुल नहीं करने के होते हैं, फिर हर काम के अंदर फिर चार चार की तफसील अलग होती है, खसूसी अलग है, उमूमी अलग है, तालीम भी खसूसी अलग है, उमूमी अलग है, इबादत भी खसूसी अलग है, उमूमी अलग है, जिक्र भी खसूसी अलग है, उमूमी अलग है, पूरे जो खिदमत भी उस खसूसी अलग है, उमूमी अलग है, मकामी अलग है, गैर मकामी अलग है, अपनी खिदमत, जमात की खिदमत, अमीर की खिदमत, महल्ले वालों की खिदमत, हर एक में चार चार का पड़ा है। वो 16-32 तक जाता है वो, मैंने मरकज निज़ामुद्दीन में बाल दमों से सुना है उसको, बहुत लंबा है वो। तो एक है खुरूज में वक्त वक्त कैसे गुजारा जाता है, क्या वो खुरूज में जब तक वक्त जैसे वक्त गुजारा जाता है उसका मुजाकरा, और एक ये है कि जिन आमाल के साथ में वक्त गुजारने को खुरूज में कहा जा रहा है उन आमाल का मुजाकरा। जब तक उन आमाल का डिटेल में मुजाकरा जमात के साथ में नहीं होता, जमात की तरबियत नहीं होती। इस बात को जरा लेना है, हमारे साथी ले नहीं रहे इस बात को। साथियों को हमने मशगूल कर दिया कि भाई जाओ तो तुम ये काम, ये काम, ये काम में रहो बल्कि, लेकिन जिन जो साथी हमारे पास आए हुए होते हैं उसमें दो एक पुराने होते हैं, बाकिया सब नए होते हैं। ये किसी को कोई ख़ास काम आया हुआ होता है, बकिया काम उसको आया हुआ नहीं होता है। पकाने वाला है तो पकाने में है, बयान वाला है तो बयान में है, जैसे चलता ना होता। ये है करना जो होता है वो ये है कि जितने आमाल करने की तरकीब दी जा रही है खुरूज में, हर हर अमल का मुजाकरा हर साथी के सामने आए, और जाहिर है कि ये बेहतरीन मौका होता है मरकज में क्याम की सूरत में कि भाई अच्छा ये बताओ कि आदाब गश्त कैसे सुनाए जाते हैं साथियों से, वो सुनना नए नए साथियों से, उनकी इसलाह करना क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तालीम के आदाब सुनाना भाई क्या है, मशवरे के आदाब सुनाइए क्या है, या खुद हम बताएं साथी हमारे मशवरे से तय हो जाएं कि ये मशवरे के आदाब का मुजाकरा करेंगे, ये आदाब तालीम का मुजाकरा करेंगे, ये तजवीद का मुजाकरा करने का अंदाज बताएंगे क्या होता है, अच्छे सिफात का मुजाकरा कैसे होता है बताओ, मुंतखब अहादीस के पढ़ने की जो वजूहत हज़रत मौलाना साहब साहब दामत बरका तुम बता रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये बता रहे हैं कि छह सिफात पर ये मुंतखब अहादीस हैं और जो किताब जो दूसरी किताब है ना वो मुस्तकिल छह सिफात पर लिखी भी नहीं है, वो उसको सामने रख के लिखी भी नहीं है। उस वक्त हज़रत शेखुल हदीस से गुजारिश की गई थी कि आप कुछ रिसाले मुरत्तब फरमा दें ताकि तमाम वालों की तरबियत के लिए पढ़ा जा सके, तो उन्होंने जो मुरत्तब फरमा दी थी उनको पढ़ा जाने लगा। हज़रत यूसुफ सर रहमतुल्लाह को इसकी फिक्र थी कि छह सिफात के एतबार से ईमानियात के नाम से मुज़ाकरा, नमाज के नाम से, इल्म के नाम से, जिक्र के नाम से, इखलास के नाम से, मुस्तकिल छह सिफात जो है ना उनके एतबार से मुंतखब हदीसें हैं। और वो दूसरा पहलू इसमें अहम यह है कि उसमें जवाइद नहीं है, एहतियात की गई है। और तीसरा अहम पहलू यह है कि उसमें ऐसी ही हदीसें हैं जो लोगों के लिए काबिल एतराज़ ना हो। जब काम फैलता है और लोगों के लिए कोई पहलू काबिल एतराज़ होता है ना तो उसको अवॉइड किया जाता है हत्तल इम्कान, ताकि झगड़ा ना हो, इंतशार ना हो। सब लोगों को मालूम है जो पुराने लोग हैं कि फ़ज़ाइल आमाल में पहले फ़ज़ाइल दरूद भी था, समझ में आ रहा है, फ़ज़ाइल रमज़ान से पहले फ़ज़ाइल दरूद थे। फ़ज़ाइल दरूद क्यों निकले इसमें से, पता है किसी को? फ़ज़ाइल दरूद इसलिए निकले कि लोगों ने एतराज़ किया उन फ़ज़ाइल दरूद पर जो कि बाहर जाने वाली जमातों थी उन पर। तो फिर क्या हुआ, अच्छा भाई ऐसा करो फ़ज़ाइल दरूद अपनी जगह पर है, उनको अलग से छाप लो, समझ में आ रहा नहीं, लेकिन इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोगों के दूसरे अफकार वालों के लिए काबिल एतराज़ थी। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि अवॉइड करना पड़ता है एक चीज़ को इंतशार से बचने के लिए। पहले हमारे ज़माने में, हमारे बचपन में जो जमातें आती थी वो अत्तहियात का मुज़ाकरा करती थी, दुआए क़ुनूत का मुज़ाकरा करती थी, जनाजे की नमाज का भी मुज़ाकरा करती थी। लेकिन जब जमातें बाहर जाना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा, तो तशहुद इब्ने मसूद पढ़ना है कि तशहुद इब्ने अब्बास पढ़ना है, अत्तहियातुल्लाह व सलावात व तय्यिबात अपन पढ़ते ना, अत्तहियातुल मुबारक वो जो है ना, क्या है वो अत्तहियात हज़रत इब्ने मसूद इब्ने अब्बास वाली जो तशहुद है वो वाला तशहुद होता है। ऐसे दुआए क़ुनूत है, अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत वाला पढ़ने का है, या ये दूसरा जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका वो पढ़ने का है, ये इख्तिलाफ़ शुरू हो गया उसमें, तो इस वजह से इसको हटा दिया गया। तो ये पुराना सेटअप है कि काम के तकाजे के एतबार से अगर कोई बात ऐसी चीज़ आ जाए तो उसको थोड़ा सा ऐसे अंदाज में मैनेज किया जाता है कि लोगों को इश्काल बाकी न रहे। फ़ज़ाइल आमाल पर जब ज़्यादा लोगों की बातचीत गुफ्तगुशनी शुरू हो गई तो फिर मुंतखब हदीस लाई गई कि जहाँ कोई ऐसा मसला ना हो वहाँ फ़ज़ाइल आमाल पढ़ लेते रहना, लेकिन जहाँ बात हो वहाँ मुंतखब हदीस पढ़ लो। इसलिए ये फरमाया, ये तो मुतय्यन करना मुश्किल है, इसलिए कहा कि एक दिन ये पढ़ लो एक दिन वो पढ़ लो, समझ में आ गया नहीं, ताकि फ़ज़ाइल आमाल पर कि ये ज़ईफ़ हदीसों का मजमुआ है या फ़लाँ मजमुआ है या फ़लाँ का किस्सा लिख दिया, फ़लाँ बुजुर्ग का किस्सा लिख दिया, वो उन सब चीज़ों को कौन बहस करते बैठेगा? कोई मौलवी साहब हैं तो समझा भी लेंगे, लेकिन जो मौलवी नहीं है तो खामा का खलजान में आएगा वो। लिहाजा भी ऐसा करो कि तुम फ़ज़ाइल आमाल के बारे में मुंतखब हदीसें पढ़ लो। तो मुंतखब हदीस पढ़ने की एक वजह बाहर के मुल्कों में काम के फैलने और जम और फ़ज़ाइल आमाल पर के मुतकल्लम फी होने, यानी उसके बारे में गुफ्तगू ज़्यादा चलने की वजह से नुकसान हो रहा था साथियों का, तो उसको अवॉइड करने के लिए। और दूसरे जो अहम बात है वो छह सिफात के मुज़ाकरे में बंदों को महदूद करना और उनको मोहतात बनाना है। इमाम साहब बयान में बहुत बोल रहे हैं ये बात कि भाई अगर ये चीज़ उनके सामने होगी तो भाई हदीसें अच्छी तरह याद कर लो देख लो, और कुरान पाक की आयतें अच्छी तरह याद कर लो देख लो, और फिर उन्हीं का मुज़ाकरा करो। बयान में हम जो ज़िगज़ैग करते हैं, इधर से उधर निकल जाते हैं उधर से उधर, हालांकि हमको जो मौजू दिया गया वो खुद ही ऐसा है कि उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हम इतने माहिर फ़न हैं कि हमने उसमें भी इख्तिलाफी चीज़ें बराबर कही कहते रहते हैं हम लोग। तो उस वजह से क्या है, नमाज का ही बयान है, इल्म का है, अखलाक का है, ऐसी चीज़ें हैं ना, कोई ईमानियात हैं, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसमें इख्तलाफात पैदा हों, लेकिन हमारे अंदाज और बातों के अंदर बेहतियाती ने बहुत से मसाइल पैदा कर दिए और करते रहते हैं। यही वजह कि हमारा आदमी बयान करता रहता है, कोई भी दूसरे मुल्कों का आदमी बैठा हुआ होता है वो एकदम खड़ा हो जाता है, खड़े होकर मसले पैदा बोल देता, शुरू कर देता है कि भाई तुम ये कहाँ से लाए, बोलो इसकी सनद बोलो उसकी सनद बोलो। तो अगर हम छह सिफात का मुजाकिरा मुंतखब हदीस से करने की आदत डालें अपने साथियों को, तो फिर ये ज़िगज़ैग नहीं करेंगे। मेरे बोलने का मतलब यह है कि जो आमाल अंजाम दिए जाते हैं खुरूज में, उन आमाल का अलग से इंडिविजुअल हर एक का मुजाकिरा करना पड़ता है, और ये काम मरकज में होगा, मरकज आबादी के अंदर, मरकज की मरकज आने वाली जमाती और मरकज से जाने वाली जमातों की तरबियत अहम होती है। गुज़िश्ता भी ये बात मैंने अर्ज की और बार बार अर्ज करना पड़ता है किसी बात को ज़हन लेने के लिए, वो ये है कि जमात से मकाम क्या फ़ायदा उठा रहा है, शहर क्या फ़ायदा उठा रहा है, मकामी जिम्मेदार क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, ये अलग चीज़ है, और आने वाली जमात को क्या फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है ये अलग चीज़ है। आने वाली जमात को अगर फ़ायदा मिलने लगेगा किसी भी जगह पर जाए, वहाँ पर जमातें आना शुरू हो जाएंगी उनकी अपनी फहम के एतबार से। अगर खाली ठिकाना है और जन वाला काम हो रहा है तो देखने का है, यह खाना पीना अच्छा मिल जाता है उस एतबार से रुजू रहेगा, लेकिन तरबियत के एतबार से और मौका मिल जाए तो नूर नाला नूर हो जाएगी ना ये बात। तो इसलिए मरकज को आबाद होने में यह है कि जो यहाँ पे 24 घंटे आबाद होना अमल के एतबार से और मामूलात के एतबार से, दुआओं के एतबार से, मुजाकिरों के एतबार से, जमात की कारगुजारी के एतबार से, बयान दावती बयान के एतबार से वगैरह वगैरह, उसके साथ साथ आने वाली जमातों का मुजाकिरा, उसके साथ साथ ये तकाजे जो अमीर साहब हमारे सामने लाते रहते हैं, मस्जिद यहाँ अगर क्या बोलते हैं मकामी लोग अगर यहाँ पर हर वक्त रहेंगे तो आने वाली जमातें ठहरने वाली जमातों की खिदमत का मसला वो भी बहुत हद तक जो है ना आसान हो जाता है, सहल हो जाता है कि भाई बजाय इसके कि एक आदमी को हम खिदमत मुकर्रर कर दें, ठीक है अगर कोई ऐसी शक्ल हो गई मिल गया तो मिल जाएगा वो, लेकिन असल हमें जो सिखाया गया है वो ये है कि हमें दावत आमाले दावत में ये बात है कि हमें खिदमत भी सीखना है, खिदमत भी करना है, आमाले दावत में दावत भी देना है, आमाले दावत में इबादत भी करनी है, आमाले दावत में तालीम भी करनी है। तो मस्जिद मरकज आबाद होने में ये है कि मरकज की मुकीम जमातों की खिदमत भी हो, मगर हमारे पास आमतौर पर होता है कि चूँकि खिदमत ही एक जहन में होता है तो उसे भी थोड़ा सा हम चमक जाते भाग जाते, वैसा भी नहीं करने का है। मकामी आदमी ज़्यादा हैं साथी उसको शरीक कर लिया जाए, जो जमातें आई हुई हैं उनको साथ ले लिया जाए, उनका उनके साथ ताउन कर दिया जाए, किसी एक पे बर्डन ना डाला जाए, मगर ये कि एक तकाजा होता है। बहुत से मेहमान होते हैं दूर दराज के आए हुए होते हैं, लग्जरी वाली लाइफ उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन किस तरह का बंदा होता है। दुबई की एक जमात आई हुई थी जिनके साथ मैं 40 दिन के वास्ते निकल गया था, काम कर रहे थे हम लोग इधर मिशिगन की तरफ, उसका जो अहमद बदावी भी साथ में था, सीधा साधा सिंपल सा आदमी है, एक सबर्ब के अंदर बयान हुआ उसका, उसका जोश में आ गया बयान में, दुनिया की बेसबाती दुनिया की हकीकत क्या है इस पर कुछ चला थोड़ा सा, उसके बाद उन्हें एक ऐसी बात बोल दिया, उन्हें बोला कि तुम लोग अमेरिका में रहते हो, इसको अमेरिका बोलते हैं, तुम्हारे घरों से हमारे ड्राइवर का घर अच्छा है, ये उसने कहा, तुम्हारे घरों से हम जो ड्राइवर को मकान देते हैं वो अच्छा है, चाहो तो चलो मेरे साथ अभी दिखा देता हूँ, ये कोई जिंदगी है ये, मतलब उसने उसको गिराना बताना था कि भाई दीन का काम करोगे तो अल्लाह दुनिया भी देगा, समझ आ रहा है ना, जिंदगी सिर्फ यही नहीं है जो तुम देख रहे हो बोल के, लग्जरी इसी का नाम नहीं है जो तुम देख रहे हो बोल के, वैसे लोग आके मस्जिद में पड़े रहते हैं। अब है बताओ उसको बेचारे को वक्त पे अगर नाश्ता हम नहीं हम फराहम कर सके, उसको हम खाना नहीं दे सके, बगैर मिर्ची का खाना नहीं खिला सके, एक अरब आदमी है, तो उसके दिल पे क्या क्या गुजरेगी, मतलब ये कि बेकरामी हो गई ना उसके एतबार से। तो यहाँ मरकज़ के आबाद होने में ये पहलू भी बहुत अहम होता है कि आने वाले साथियों की दिलजोई हो और उनकी सलाहियत के एतबार से हो। एक जमात में एक साथी जो है ना, जमात चाहे कुछ भी खाए मेरे को एक मुर्गी होना बोलता था, इंडिया की जमात की बात हो रही, वो जहाँ पे हर वक्त दाल घुटते रहती है, एक मुर्गी तो बहुत बड़ी, मगर उसको एक मुर्गी चाहिए था रोजाना, वो मरकज निजामुद्दीन तक बात चली गई, मरा मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी हयात थे, उनका ही सुनाया हुआ किस्सा है, उन्होंने कहा कि हमने तफाकुत किया उस बंदे का, तो पता चला कि उसको रोजाना घर में चार मुर्गियाँ होना, तो उन्हें बोल रहा जमात में एक तो दो मेरे को कम से कम, जिसको घर पे रोजाना चार मुर्गियां चाहिए उसको एक चाहिए, समझ कर यहाँ उसका मुजाहिदा एक मुर्गी खाना था, या हमारे पास एक मुर्गी में पूरी जमात को एडजस्ट करना होता है, तो ऐसी सूरतें होती हैं। तो आने वाले साथी बड़े कीमती होते हैं, बहुत नाजुक मिजाज होते हैं, बहुत सलाहियतों वाले होते हैं, अगर थोड़ा सा उनका इकराम हो गया, उनका जी लग गया, और उनको इस लाइन से कुछ ज्यादा हाँ तकलीफ उठाना नहीं पड़ गया, बड़ा काम हो जाता है, काम पे लग जाता है वो बंदा। और अगर नहीं तो पिछल गया तो काम से फिसल भी जाता है वो बंदा, तो हम फिसलने का सबब बन गए या काम पे लगने का सबब बन गए पता नहीं चलता। इसलिए आप मरकज के आबाद होने में ये सब नजाकतें होती हैं, खिदमत भी करने का है हमको और आने वाली जमातों की तरबियत भी होना है, आमाल का मुजाकरा भी डिटेल में होना है। हम में से हर साथी सलाहियत भी नहीं रखता मुजाकरा करने की, अब अंदाजा अब जब करने बैठोगे ना तब पता चलेगा कि अरे यार ये तो काम मेरे बस का नहीं है, ये तो किसी बुढ़े पुराने तबलीगी को लगाना पड़ेगा बोलते लोग। और ऐसे ही होता है, हम अपने हैदराबाद में वही देखते थे, हमारे काम करने वाले पुराने साथी हिम्मत नहीं करते थे मुजाकरों पर, हमारे मखसूस साथी थे जिनको मुजाकरों पर लगाया जाता था कि भाई तुम आमाल के अंदर जो तफसीलात हैं उनका तुम मुजाकरा करो, तालीम का मुजाकरा, छः सिफात का मुजाकरा, फजाइल गश्त का मुजाकरा, मस्जिदवार जमात का मुजाकरा, पांच आमाल का मुजाकरा, मशवरे का मुजाकरा, आदाब मशवरे का मुजाकरा। जमात में जो हम मुजाकरे करते हैं वो अलग होते हैं, वो ये नहीं होते हैं जमातों में मुजाकरात, मुजाकरों में वो खुरूज में जो मुजाकरे की तफसीलात होती हैं वही ज़्यादा आती हैं, कभी कभी ये भी आती हैं लेकिन वो बहुत कम आती हैं, बहुत कम जमातों में ऐसा हो पाता है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों जब हमारा इस मस्जिद को आबाद करना और बार बार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त देना ये बहुत ज़रूरी है। तो जिन जिन साथियों ने वक्त देने का इरादा किया, गुजारिश ये है कि वो अपनी बात पे पक्के रहें और अज़्म से काम लें। और अपने साथियों को जोड़ें इसमें। अमीर साहब एक और बात की तरह मुतवज्जे फरमा रहे हैं, वो ये है कि खिदमत के मामले के अंदर जहाँ ये खिदमत का मसला है कि आने वाली जमातों की खिदमत की जाए, वहाँ ये भी है कि खिदमत के लिए कुछ सहूलतें चाहिए होती हैं, खिदमत के लिए कुछ अमाउंट चाहिए होता है, कुछ सहूलतें चाहिए होती हैं, उसमें भी अगर कंट्रीब्यूशन हुआ करे अपने साथियों का। जैसे अभी हमारे पास गुज़िश्ता एक तकाज़ा आया था कि भाई जो इज्तिमा हुआ है उस इज्तिमा के अंदर इतने पैसे यानी हमको जो है ना कम पड़ गए हैं, तो माशाल्लाह साथियों ने हिम्मत की, काम हो गया। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐसा दिया है मेरे दोस्तों के निज़ाम के, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है उम्मत के पैसे में, और हमें अल्लाह के लिए जान मान लगाने की आदत डालना है, और अपने पैसे से अगर जब अपने पैसे दूसरों पर लगने वाली शक्ल आएगी तो उस वक्त काम बहुत ज़्यादा फैलेगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेना है, और इसमें जो है साथियों को तरगीब देने की और आम उमूमी लोगों को तरगीब दे के कलेक्शन वगैरह करने की तरतीब दावत में इसीलिए नहीं होती है कि अगर साथी का जहन इतना खुद से लेने का नहीं है तो वो बोलने पर भी क्या देगा। असल दावत वालों का, दावत के जो जिम्मेदार हैं उनका अंदाज ये था कि तुम बंदे को इस तरीके से, बंदे की तश्कील इस तरह करो कि उससे चंदे की तश्कील करना ना पड़े। समझ में आ गया नहीं आगे? बंदा अपनी जान और माल से हाजिर हो जाए दीन की खिदमत के लिए, समझ में आ गया नहीं? तो जब आदमी उस तकाजे, जब मिजाज उसका ले लेता है उस चीज़ को, हाजिर हो जाता है खिदमत के वास्ते, तो फिर वो इन सब चीज़ों को समझता है। हम खिदमत के लिए चाहिए, हमें रहना ही है, अवेलेबल रहना है, लेकिन खिदमत चीज़ें होंगी तो खिदमत भी होंगी, चीज़ें कहाँ से आएंगी, उसका तकाजा कौन लेगा, हम ही लोग लेंगे, कोई ऐसा सोर्स तो हमारे पास होता नहीं है। हम अपने कामों को इसी तरीके से आपस में तकाजों को बांट बांट के कर लिया करते हैं। तो हर एक हम में से हर साथी थोड़ा सा जितना कंट्रीब्यूट उसका हो सकता है वो अपने जहन में रख ले कि भाई मुझे इतना इस सिलसिले में मरकज की खिदमत के वास्ते मुझे देना है, तो बहुत आसान हो जाएगा। इतने साथी माशाल्लाह काम करने वाले हैं कि बस हमारे यहाँ मसल मशहूर है कि चुन्नू ने इतना दिया, मुन्नू ने इतना दिया और बुन्नू का पेट भर गया बोल के। तो यहाँ अल्लाह पाक ने कतरा कतरा दरिया शब्द वाली बरकत रखी है, हर साथी थोड़ा, एक साथी पर आप बर्डन डालोगे मुश्किल हो जाएगी, कहाँ तक निभाएगा वो। और अगर हर साथी थोड़ा थोड़ा ऐसा कि जो उसके लिए ज़्यादा तकलीफ दे भी ना हो, बोझ भी उस पर ना पड़ रहा हो, और महसूस कर सकता हो बंदा कि मैं इतना बहुत ज़्यादा आसानी से अफोर्ड कर सकता हूँ। अब देखो मरकज़ के अखराजात कैसे आसानी से चल सकते हैं, मरकज़ के तकाजे कैसे पूरे हो सकते हैं, ये सब उमूर हैं मेरे दोस्तों कि माली एतबार से जो इसकी ज़रूरियात हैं उसकी भी फिक्र रखना, खिदमत के एतबार से जो ज़रूरियात हैं उसकी भी फिक्र कर रखना। एक मरतबा मैंने निज़ामुद्दीन में एक बात सुनी थी, फरमाया कि अगर किसी गरीब को आपने पैसे दे दिए तुम खा लो बोल के, ये खिदमत नहीं है। मैंने निज़ामुद्दीन में ही सुना था, खिदमत अलग चीज होती है, खिदमत है योर सेल्फ, अपने से मशगूल होना काम में, वो तबर्रुम होता है, किसी को पैसे दे दिए जाके खा लो तो ये एहसान में आता है, ये तबर्रुम में आता है, ये खिदमत में नहीं आता। इसी वजह से आप देखेंगे अरबों को कि उनकी खिदमत में ये मिजाज है कि उनका बड़े से बड़ा सेठ मालदार नवाब आदमी भी अपने आने वाले मेहमानों को खुद से हाथ धुलाएगा, खुद उसके साथ बैठेगा, खुद खिलाएगा, खुद दस्तरखान बिछाएगा, खुद सामान रखेगा, खुद पेश करेगा खाना, क्योंकि उनके पास खिदमत का कॉन्सेप्ट है कि खिदमत में बंदे को खुद लगना पड़ता है, इल्ला ये कि बीमारी हो, माजूरी हो, तो फिर वो अपने खादिम को साथ में लगा लेता है कि भाई तू खिदमत कर मेहमानों की बोल के। लेकिन उसमें तौर पर खिदमत अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ होती है। तो हमें खिदमत भी करनी है और उस अखराजात वगैरह का जो बर्डन होता है वो भी लेना है, और उसके साथ साथ आबादी मस्जिद के अंदर ये बात में जहन में रखने की है कि ये उसका असल हिस्सा नहीं होता है, ये एक ज़ेहनी चीज़ है, ये एक ज़िमनी चीज़ है। हम इसको अगर सबसे ज़्यादा अहमियत दिए, इसी को असल बना दिए तो नहीं होता काम, और साथ ही फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से मतलब उनका मोरल कम हो जाता है, फिर वो नहीं दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो जितने उमूर हैं जिनका भी मुज़ाकरा हुआ, और भी बहुत से हमारे माशाल्लाह अमीर साहब की तरफ से आते ही रहता है, मुज़ाकरा होता रहता है, इन सारी चीज़ों को मेरे दोस्तों हम सारे फिक्रें तकाजे के तौर पर लें अपने ऊपर, इन जिम्मेदारी को महसूस करें। इंशाल्लाह ताला अगर हम थोड़ा सा इसमें हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे और इस तरह जौलाद की शक्लें, गश्तों की शक्लें, मुलाकातों की शक्लें, जो हज़ारों लोग हमारे अतराफ़ में हैं, यहाँ से पहुँच पहुँच के उनसे विजिट्स करना, उनसे मुलाकातें करना, हमारे अतराफ़ की मस्जिदों को मजबूत करना, दूसरी जौला को मजबूत करना, नकल मकानी वाली जो इंतकाली जो जौला होती है हमारी उसको मजबूत करना, पाँच अमाल को मस्जिदों के ज़िंदा करना। मस्जिदों में पांच अमाल हो रहे हैं क्या बोलते हैं, हो रहे हैं, लेकिन आप वहाँ जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि वो पांच अमाल किस तरीके के हो रहे हैं। जो वहाँ हम जाएंगे, हमारा एक जमात यहाँ से जाएगी मरकज़ से नुमाइंदा बनके, तो पता चलेगा कि वहाँ पांच अमाल जिंदा होने का क्या मतलब है, कितने साथी जुड़ रहे हैं रोज़ाना के मशवरे में, उनके उनके उनकी तालीम की नौयत क्या है, कितनी देर तालीम होती है, वो मुसल्लियों को किस तरह तालीम के लिए आमादा कर रहे हैं। बहुत सी मस्जिदों को मैंने देखा इंडिया में कि ऐसी उन्होंने ज़हनियत बनाई तालीम की मस्जिदों की कि भाई दूसरे अमाल में जुड़े ना जुड़े पूरी मस्जिद एज इट इज़ बैठी रहती है तालीम होने तक, पूरी मस्जिद भरी हुई, कोई नहीं जाता उठ के। मैंने बम्बई में भी ऐसे देखा और हैदराबाद हमारे मल्लपल्ली में भी माशाल्लाह तालीम जो रोज़ाना होती है पूरी मस्जिद ईशा के बाद भरी हुई होती है और 15-20 मिनट तक तालीम होती है, एक बंदा नहीं होता। तो अगर मस्जिद तालीम अगर होती है तो तालीम में कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं मस्जिद के मुसल्लियों को, हमारे साथी जाएंगे जमात वाले जाके देखेंगे तो फिर उससे बंदे अपने को मिलेंगे, सिरोदा वाले बंदे, 10 रोज़ा वाले, 40 चिल्ले वाले और 4 महीने वाले बंदे। तो पांच अमाल को ज़िंदा करने के वास्ते अमाल करने वालों का सपोर्ट चाहिए, उनको कौन सपोर्ट करेगा, मस्जिद मरकज़ की मस्जिद जमात करेगी वो। ऐसे ही गश्त को गश्त में सपोर्ट करना होता है, जमातों की नुसरत में पहुँचना होता है, आने वाली जमातों की नुसरत हो या यहाँ से भेजे जाने वालों की नुसरत हो, उनकी सपोर्ट, ये सब उम्र बहुत से हैं। तो ये आप लोगों को करना होता है कि यहाँ आए, आके बैठ के इन जिम्मेदारियों को समझें, इन तकाज़ों को समझें कि ये तकाज़ा कंप्यूटर के लेन का, आईटी के लेन के तकाज़े यहाँ पे बहुत हैं माशाल्लाह। महल्ले के, बस्तियों के, मुख्तलिफ इलाक़ों के बहुत से नाम हम साथियों ने ख़रीदे, अब जाने वाला उनको 27-27 हज़ार 25-25 हज़ार नाम मुसलमानों के लोगों को मिल गए हैं, लेकिन अब उन तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे, उसका सेटअप कैसे बने, ये सब आप हजरात को करने के काम है। तो जो साथी इरादा किए हैं इंशाल्लाह ताला वो सब आएंगे ना भाई, उनके अलावा जिन्होंने अब तक रोज़ाना में असर से इशा तक के आने के सिलसिले में इन मौजूदा लोगों में से जिन्होंने इरादा नहीं किया था, इजहार नहीं किया था, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने नाम पेश करें कि कौन साथी ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले नाम नहीं दिया था, आज वो तैयार है इंशाल्लाह।